यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र का विचार लगभग कल हो गया है। 18 मंत्रात्मक ईशावास्योपनिषद यजुर्वेदीय है। यजुर्वेद का शांति मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं इत्यादि। तो ये जो शांति मंत्र है यही एक प्रकार से ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण भी है। इसका विचार इसी उपनिषद का यह शांति मंत्र होने के कारण, बृहदारण्यक उपनिषद का भी यही शांति मंत्र है। तो इस पर हमने कल कहा था, ये भी इसी उपनिषद का ही एक अंश रूप है, अतः इसका विचार भी आवश्यक है। ईशावास्योपनिषद का जो प्रथम मंत्र है ज्ञान निष्ठा के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाला, और इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित जो संक्षेप में ज्ञान निष्ठा है यानी ज्ञान रूपी साधन है, उसका विषय है परमात्मा, और उस परमात्मा का स्वरूप वर्णन यहां पर तृतीय मंत्र से लेकर के हुआ आठवें मंत्र तक। तृतीय मंत्र में तो ज्ञान की महत्ता बताने के लिए अज्ञान की निंदा की, अज्ञान की निंदा से जिसने अज्ञान की निंदा सुनी उसके बुद्धि में ज्ञान का महत्व बैठ गया, यही अज्ञान की निंदा तृतीय मंत्र के द्वारा करने का उद्देश्य था। तो वो जो महत्व ज्ञान की अपेक्षा महत्वपूर्ण अज्ञान की अपेक्षा महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान? तो परमात्मा का ज्ञान। इसलिए परमात्मा का स्वरूप वर्णन चतुर्थ मंत्र से हुआ और उसी परमात्मा का वर्णन और एक प्रकार से महावाक्यार्थ बताने के लिए ये पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि शांति मंत्र है। उपनिषद में आए हुए जो वाक्य हैं उनके दो भेद करते हैं विचारक लोग। उपनिषद के कुछ वाक्य हैं महावाक्य और कुछ वाक्यों को कहा जाता है अवांतर वाक्य। महावाक्य शब्द को सुन करके ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ा वाक्य होगा जो कम से कम दो चार पेज का तो होगा ही एक वाक्य, तो महावाक्य बना। ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं महावाक्य। प्रसिद्ध जो महावाक्य हैं आप जानते ही हैं कितने छोटे छोटे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, कितने छोटे छोटे वाक्य हैं ये महावाक्य कहलाते हैं। और इन महावाक्यों में आए हुए तत्पदार्थ के स्वरूप को बताने वाले और त्वम पदार्थ के स्वरूप को बताने वाले जो वाक्य होंगे उन्हें कहा जाता है अवांतर वाक्य। महावाक्य में आए हुए पदों का अर्थ बताने वाले वाक्य अवांतर वाक्य और महावाक्य। तो महावाक्य है वो, महावाक्य होता है पदार्थों का यानी त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का अभेद बताने वाला वाक्य। त्वम पदार्थ है जीव, तत्पदार्थ है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा का अभेद बताने वाला वाक्य, ब्रह्मात्म एकत्व बताने वाला वाक्य महावाक्य कहलाता है। ये महावाक्य छोटा होने पर भी इसे महा इस शब्द से क्यों विशेषित किया जा रहा है? कहते इसलिए कि इस वाक्य का जो अर्थ है तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का जो अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व और इस ब्रह्मात्म एकत्व रूप अर्थ ज्ञान का फल बहुत महान है। तो जिस वाक्यार्थ ज्ञान का फल श्रेष्ठ हो महान हो उस वाक्य को उसके फल की महत्ता को लेकर के महावाक्य कहा जाता है। तो ये जो तत्वमसि वाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं इनके अर्थ का ज्ञान का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार अनुभव। ये है महावाक्यार्थ ज्ञान, महावाक्यों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और इस साक्षात्कार का फल क्या है कि जो आप चार पुरुषार्थ सुनते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है मोक्ष। और मोक्ष के अनेक नाम हैं, उसमें मुक्ति भी मोक्ष का एक नाम है। और ये जो मोक्ष है कहिए या मुक्ति कहिए, ये किसका फल है? मोक्ष ये फल है ज्ञान का। कौन से ज्ञान का? महावाक्यार्थ ज्ञान का। तत्त्वमशादी वाक्य से अधिकारी के बुद्धि में जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, एक वृत्ति बनती है, उसी वृत्ति से आपके समस्त दुखों की जड़ जो भ्रांति है, मूलभूत जो भ्रांति है, वह अपने कारण स्वरूप के अज्ञान के साथ निवृत्त हो जाती है। जीवों के दुखों का हेतुभूत जो भ्रम, उसकी समूल निवृत्ति ये अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का फल है। और ये संपन्न होता है ज्ञान से। अरे अज्ञान यदि मिट जाए अपनी ब्रह्म रूपता का, तो आपकी जो अनादिकाल से अहंता ब्रह्म से बिछुड़ करके 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से किसी न किसी कार्यक्रम संघात के साथ जुड़ जाती हैं। 84 लाख प्रकार की योनि में से किसी न किसी योनि के साथ अहंता भ्रांति से जुड़ जाती हैं, अज्ञान के कारण जुड़ जाती हैं। उस अहंता का अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में ही अवस्थित होना, यही स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष कहलाता है। ये अहंता आपकी आपके अपने वास्तविक स्वरूप में, और वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उसमें अवस्थित हो जाए तो माना जाता है स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष हो गया। मोक्ष का अर्थ है आप जो हैं उसी में आप स्थित हो जाए। आपके स्थित होने का अर्थ है आपकी अहंता का स्थित होना। तो आप वस्तुतः ब्रह्म रूप हैं, तो उस ब्रह्म में आपकी अहंता का ठीक से अवस्थित होने का नाम है मुक्त होना। जो आप नहीं हैं, 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से एक भी आप नहीं है। वेष्टि कार्यक्रम संघात आप नहीं है तो समष्टि कार्यक्रम संघात भी आप नहीं है। जैसे वेष्टि अनात्मा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को आत्मा समझना भ्रांति है, ऐसे समष्टि जो कार्यक्रम संघात है ये भी तो अनात्मा है, इसे भी आत्मा समझना ये भी वैसी ही भ्रांति है जैसे मैं मनुष्य हूं, ये भ्रांति है। ऐसे मैं हिरण्यगर्भ हूं, यही यदि अपना यथार्थ ज्ञान कोई समझता है तो इसे भी वेदांत के दृष्टि में भ्रांति ही कहा जाता है। और मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। तो माना जाता है मैं ब्रह्म हूं ऐसी ही आपको प्रतिपल अनुभूति हो रही है तो आपकी अहंता ब्रह्म में स्थित है, आप मुक्त हैं। और इस प्रकार की मुक्ति का फल है फिर उसे किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होती। ईशावास्योपनिषद ने कहा कि तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यतः। तो जो अपने वास्तविक स्वरूप के साथ अपने एकत्व की अनुभूति कर रहा है उसकी बुद्धि में शोक और मोह नहीं रहता। का मतलब किसी भी प्रकार का दुख उसके अंदर हो नहीं सकता। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। और मनुष्य अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का जीवन इसी के लिए है। शास्त्र कभी भी जो कार्य जिसके द्वारा करना असंभव है उसे वह कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं करता, प्रेरणा नहीं देता। और आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि से आत्मज्ञान के लिए मनुष्य को प्रेरित कर रहा है शास्त्र। इसका अर्थ है कि शास्त्र देख रहा है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का आत्मा का अनुभव करने में समर्थ है। जिस कार्य को करने में जो असमर्थ है उसे शास्त्र प्रेरणा ही नहीं देता असमर्थ को। और मनुष्य को ब्रह्म को जानने की प्रेरणा शास्त्र दे रहा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य ब्रह्म को जान सकता है आत्मरूप से, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अन्य योनि को शास्त्र प्रेरणा नहीं कर रहा है। गौ की मनुष्य को पूजा करने के लिए तो कहता है शास्त्र, लेकिन गाय को यह नहीं कहता कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, आत्मावारे द्रष्टव्य। ये उपदेश शास्त्र गाय को नहीं कर सकता, भले ही मनुष्य की पूजनीय गाय हो, लेकिन गाय में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह वेदांत का विचार कर सके, आत्मा को बताने वाले वाक्यार्थ को जान सके। और मनुष्य में ये सामर्थ्य है, मनुष्य की बुद्धि में। तो इसलिए आत्मदर्शन की प्रेरणा स्थान स्थान पर मनुष्य को दी जा रही है। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, नो चेद यहा वेदिन महति विनष्टि इत्यादि मंत्र ये बता रहे हैं कि ये जो आत्मदर्शन करने योग्य शरीर है, इस शरीर के रहते रहते यदि आपने अपने आप को जान लिया तो अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर लिया। और हाँ, और जानने का अर्थ है ऐसा नहीं जानना शब्दार्थ के रूप में, अनुभव प्रतिपल हो जाए, जैसा मैं मनुष्य हूं ये अनुभव आपको ब्रह्मा जी आकर के भी कह दे कि आप इंद्र हैं तो मानेंगे नहीं, या आप घोड़ा है ये कहने से भी मानेंगे नहीं, लेकिन आपको ये इस समय यथार्थ अनुभव है कि मैं मनुष्य हूं, ये जैसा दृढ़ निश्चय है, इतना दृढ़ निश्चय आपको मैं ब्रह्म हूं ऐसा हो जा, कोई भी आकर के आपके इस निश्चय से आपको डगमगा न सके तो माना जाता है कि आत्मज्ञान हुआ आपको। ये खाली ये तो जानकारी मात्र है सामान्य रूप से कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो अपने वैदिक संस्कृति में पलने फूलने वाले छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये जानकारी है, अनुभव नहीं। अनुभव तो हाथ में रखे हुए आंवले का जैसा आपको ज्ञान होता है, उसके विषय में संशय भी नहीं होता और विपर्य यानी भ्रांति भी नहीं होती कि ये आंवला है कि कोई दूसरी वस्तु है, प्लास्टिक की गोली है, ऐसा संशय भी नहीं होता। नहीं, ये प्लास्टिक की गोली ही है, ऐसा विपर्य यानी भ्रांति भी नहीं होती, किंतु ये यथार्थ निश्चय रहता है कि ये आंवला ही है। शास्त्रों में इसी का उदाहरण दिया, करामलकवत अपना ब्रह्म के रूप से अनुभव जिसको हुआ तो उसे गीता कहती है वो कृतार्थ है। ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, सबसे बुद्धिमान मनुष्य उसे कहा गया जो महावाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त कर चुका है। और कहते कृत कृत्यश्च भारत, ये ज्ञान होते ही फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वो कृतार्थ हो जाता है। और इस ज्ञान के पहले कुछ भी कर ले तो कुछ न कुछ करना, बहुत कुछ करने के बाद भी शेष रहता ही है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये ज्ञान मनुष्य को कृतार्थ करने वाला, मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाला होता है महावाक्यों से। इसलिए उन्हें छोटे होने पर भी तत्वमसी, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य बहुत छोटे हैं, लेकिन इनको महावाक्य कहा जा रहा है क्योंकि इनके अर्थ ज्ञान का फल बहुत महान है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। और ये जो पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि वाक्य हैं, ये भी एक प्रकार से महावाक्य के तरह है, महावाक्य ही है। इसमें पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस मंत्र में जो चार चरण है, चार पाद है, श्लोक है ना, मंत्र है, उसमें चार पाद होते हैं। तो पहला पाद है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसमें बताया गया कि महावाक्य के रूप में, उपदेश वाक्य के रूप में प्रसिद्ध वाक्य है तत्त्वमसी वाक्य सामवेद का। उसमें एक है तत् शब्द, दूसरा है त्वम शब्द और तीसरा है असि शब्द। तत्पद का तो अर्थ है परमात्मा, त्वम पद का अर्थ है जीव, और असि शब्द का अर्थ है दोनों का अभेद, एकत्व। तो इसलिए जब कभी विचार होता है तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ करके लिया जाता है। तो यहां पर भी अधः शब्द तत्त्वमसि वाक्य में आए हुए तत्पदार्थ को बताता है। तो अतः अधः शब्द का अर्थ है वह, ऐसे अधः और तत् ये दोनों सर्वनाम हैं, समानार्थक है, इसलिए अधः शब्द का अर्थ होता है वह। वह यानी कौन? तो परमात्मा ब्रह्म। वो पूर्ण है, तो पूर्ण शब्द का अर्थ होता है अपरिछिन्न। वह पूर्ण है, पूर्णमदः यानी वह अपरिछिन्न है। परिछिन्नता तीन प्रकार से होती है, तीन परिच्छेदक हैं, देश, काल और वस्तु, इन तीन को कहा जाता है परिच्छेदक। और इन तीन में से किसी से भी जो परिछिन्न होता है उसे अपूर्ण कहा जाता है। जो देश से परिछिन्न हो जाए वो भी अपूर्ण है, जो काल से परिछिन्न हो जाए वो भी अपूर्ण है, और जो वस्तु से परिछिन्न हो जाए उसे भी अपूर्ण कहा जाता है। और जो इन तीन में से एक से भी परिछिन्न नहीं होता वो है अपरिछिन्न पूर्ण। तो कहते हैं अधः यानी ब्रह्म पूर्ण है, मतलब देश से भी अपरिछिन्न है, काल से भी अपरिछिन्न है और वस्तु से भी अपरिछिन्न है। देश से परिछिन्न कौन होता है? जो एक स्थान पर रहे दूसरे स्थान पर न हो उसे देश से परिछिन्न कहा जाता है। आकाश देश से अपरिछिन्न है इसलिए कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आकाश न हो, सर्वत्र है आकाश। ऐसा नहीं कि आकाश यहां है तो काशी में नहीं है, आकाश सर्वत्र होने से देश से अपरिछिन्न है। देश से अपरिछिन्न होने पर भी उसे पूर्ण नहीं कहा जाता है।